संजीवनी विद्या का विस्तार क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला 16। सार संक्षेप। नवसृजन के निमित्त आज जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है उसे विद्या या मेधा नाम से जाना जाता है। इसके लिए विद्यालयों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। प्रत्यक्ष उदाहरणों को प्रेरणाप्रद माहौल सामने आए बिना समझा नहीं जा सकता कि विद्या क्या है व इसे कैसे जीवन में उतारा जाए। विभिन्न भाषाओं संप्रदायों में बटे 600 करोड़ मनुष्यों को कैसे इस युग चेतना के प्रवाह से जोड़ा जाए उसी का प्रारूप है संजीवनी विद्या का विस्तार। गायत्री परिवार के सूत्र संचालक ने अखंड ज्योति पत्रिका को अपनी संरचनात्मक संपत्ति माना है और पूरा विश्वास जताया है कि 25 लाख पाठकों द्वारा पढ़ी या सुनी जाने वाली विद्या विस्तार करने वाली यह प्रक्रिया जन जन तक पहुंचेगी। संजीवनी विद्या मूर्छना से उबारने हेतु ऋषि प्रणीत एक प्रयोग है। इसी महाविद्या को अनौचित्य से निपटने और औचित्य को सक्रिय करने हेतु नियोजित किया जाना है। संजीवनी विद्या के साथ जुड़ी आदर्शवादी उत्कृष्टता सीधे अंतःकरण में उतर जाती है। विद्या से विवेक उभरता है, व्यक्तित्व परिष्कृत होता है तथा प्रतिभा निखरती है। शालीनता इतनी ऊंची उठ जाती है जिससे सामान्य आदमी भी देवमानव बन सके। जले हुए दीपक ही बुझों को जला सकते हैं। इस मान्यता को ध्यान में रख सृजन साधकों के निर्माण हेतु 12 वर्षीय युग सिंधी महापुरुष चरण का प्रावधान हुआ एवं 21वीं सदी के युग शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु शांतिकुंज में संजीवनी साधना के शिक्षण की विस्तृत व्यवस्था है। अनुक्रमणिका 1. युग साहित्य का सृजन जिसे किए बिना कोई गति नहीं। 2.1 लाख अध्यापकों द्वारा विद्या विस्तार का श्री गणेश। 3. संजीवनी विद्या को व्यापक बनाया जाए। 4. महाविद्या का उदय और अभ्युदय। 5. जले दीपक ही बुझों को जलाएंगे। 6. मूर्छना का पुनर्जागरण अनिवार्य है। 7. लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण। 8. 5 दिवसीय साधना का स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप। युग साहित्य का सृजन जिसे किए बिना कोई गति नहीं। आवश्यक अनावश्यक जानकारियां सिर पर लादने और नौकरी स्तर की कुछ आजीविका कमा लेने के लक्ष्य तक सीमित वर्तमान स्कूली शिक्षा अपने धर्रे पर चलती भी रह सकती है। जिन्हें उसमें रुचि हो वे उसे अपनाए भी रहें, पर उसी को सब कुछ मानकर उसी परिधि में सीमित रहने से काम चलेगा नहीं। अगले दिनों व्यक्ति और समाज को जिस ढांचे में ढालना है उसका प्रकाशाभास भी उसमें कहीं ढूंढे नहीं मिलता। जिस सुधार और सृजन की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए कोई संकेत तक उसमें नहीं है। आज तो सबसे अधिक आवश्यकता उसी की है जिसको प्राचीन काल से विद्या या मेधा के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं ही हर समस्या का निराकरण करने की स्थिति में होती है। अब आगमन अवतरण उसी का होने जा रहा है। जिन अभिनव जानकारियों और प्रेरणाओं की इन्हीं दिनों आवश्यकता है उन्हें प्राप्त करने के लिए स्कूलों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उनमें एक तो उन विषयों का समावेश ही नहीं है, दूसरे वह पुस्तक रटन से पूरी भी नहीं हो सकती। उसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरणों का प्रेरणाप्रद माहौल सामने रहना चाहिए। विशेषत अध्यापक इस स्तर के होने चाहिए जो अपने सांचे में ढालकर छात्रों को ऐसे प्रतिभावान व प्राणवान बना सकें जो न केवल स्वयं बने वरन अपने आलोक से समूचे संपर्क क्षेत्र को प्रकाशित कर सकें। प्रज्ञा का अवतरण और विस्तार का कार्य असाधारण रूप से विस्तृत है। उससे शिक्षित अशिक्षित नर नारी बाल वृद्ध स्वस्थ रोगी सभी को अवगत कराया जाना है। भाषाओं की छोटी छोटी परिधि में बटे हुए इस संसार में रहने वाले 600 करोड़ मनुष्यों को एक प्रकार से युग चेतना तंत्र के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाना है। यह योजना इतनी बड़ी होगी कि पूरी करने में कम 100 वर्ष का समय और अरबों खरबों जितना धन जुटाना पड़ेगा। अध्यापक भर्ती और प्रशिक्षित करने पड़ेंगे सो अलग। इसलिए युग शिक्षा का स्वरूप उन आधारों को अपनाते हुए विनिर्मित करना पड़ेगा जो आज की परिस्थितियों में इन्हीं दिनों कर सकना संभव हो। बड़े प्रयासों की प्रतीक्षा में रुके रहने की अपेक्षा यही उपयुक्त समझा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपने छोटे साधनों से जो संभव हो उसे तुरंत आरंभ किया जाए और लोगों को देखने दिया जाए कि आरंभ का प्रतिफल किस रूप में उपलब्ध हो रहा है। बात यदि वजनदार होगी तो लोग अपनाएंगे भी। प्रचलित शिक्षा प्रणाली किसी हद तक अपना अस्तित्व बनाए भी रह सकती है, पर उसकी आड़ में युग शिक्षण को रोका नहीं जा सकता। युग शिक्षण में ये विषय आवश्यक हैं: 1. व्यक्तित्व का समग्र विकास परिष्कार। 2. समाज संरचना और उसके साथ जुड़े हुए प्रचलनों का नव निर्धारण। 3. अर्थव्यवस्था। 4. सुलभ आजीविका कैसे उपलब्ध हो। 5. मनुष्य के चिंतन चरित्र और व्यवहार में शालीनता का समावेश किस प्रकार बढ़ता चले। 6. परिवारों की वर्तमान संरचना में क्या सुधार परिवर्तन किया जाए। 7. शारीरिक और मानसिक रुग्णता से सुनिश्चित छुटकारा किस प्रकार मिले। 8. अवांछनीयता से किस प्रकार निपटा जाए। 9. अब की अपेक्षा कहीं सुखद और सरल परिस्थितियों का निर्धारण कैसे किया जाए। 10. सहकारिता और सद्भावना का क्षेत्र कैसे बढ़े। 11. तत्वदर्शन क्षेत्र में परिष्कार विरोधी मान्यताओं का समीकरण कैसे किया जाए। 12. राजतंत्र और धर्मतंत्र की उभयपक्षीय समर्थ शक्तियों को किस प्रकार नए युग के अनुरूप सांचे में ढाला जाए, यह कुछ थोड़े से विषयों की ही चर्चा है। इन्हीं विषयों में से प्रत्येक की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र विषय क्षेत्र घोषित करती हैं। ऐसी दशा में युग शिक्षा का पुस्तकीय, मौखिक और व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करना इतना बड़ा काम हो जाता है जिसे वर्तमान शिक्षा तंत्र की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और वजनदार ही कहा जाएगा। विलंब से बनने वाले किले या महल की तुलना में यही अच्छा है कि आज की आवश्यकता पूरी कर सकने वाली झोपड़ी का ढांचा अपने ही हाथों अपने साधनों से खड़ा कर लिया जाए। युग साहित्य का सृजन इस संदर्भ में प्रत्यक्ष कार्य है ताकि अभिनव प्रसंग की पृष्ठभूमि और रूपरेखा के संबंध में जिन बातों की अनिवार्य रूप से तात्कालिक आवश्यकता है उसे पूरा न सही मार्गदर्शन रूप में तो प्रस्तुत किया ही जा सके। लोग उपयोगिता समझेंगे तो उस प्रयोग को विस्तार देने में भी उत्साह प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनियां इसीलिए लगाई जाती है कि उन्हें देखकर लोग किसी सुव्यवस्थित विषय की जानकारी कम समय में प्राप्त कर सकें। अपनी सामर्थ्य और कार्य की विशालता का मध्यवर्ती तालमेल जिस प्रकार बैठ सकता था उसी को इन दिनों अपनी सूझबूझ और प्रभाव के अनुरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। युग निर्माण योजना, मथुरा और शांतिकुंज हरिद्वार से ऐसा साहित्य प्रकाशित करना आरंभ कर दिया गया है जो प्रस्तुत समस्याओं के अनेकानेक विषयों पर प्रकाश डालता है। इन विषयों के संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण से काम न चलेगा, उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन होना चाहिए। सीमित लेखन भी पर्याप्त नहीं, अब हर विषय को अनेक तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अगले दिनों युग साहित्य के ऐसे ही विस्तार की आवश्यकता है। बिना किसी प्रतीक्षा के वर्तमान साधनों से ही उसका शुभारंभ कर दिया गया है। आशा यह रखी है कि रोपा गया यह अंकुर अगले दिनों वट वृक्षों जैसा विशाल कलेवर धारण करेगा। इस कार्यक्रम में कितनी ही कठिनाइयां हैं। एक यह कि अपने देश की दो तिहाई जनता अशिक्षित है, वह साहित्य का लाभ कैसे उठाए। फिर इस घोर महंगाई के जमाने में आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त अशिक्षित स्तर की जनता उसे किस आधार पर खरीदे। थोड़े से जो शिक्षित बच जाते हैं वे भी मनोरंजन के लिए चटपटा साहित्य भर खरीदते हैं। युग साहित्य में ऐसा कुछ न रहने पर उन पर भी जबरदस्ती कैसे लादा जाए। एक तो युग साहित्य का लेखन भी मात्र युग दृष्टा के ही बलबूते का काम है, दूसरे उसके प्रकाशन में बड़ी पूंजी लगती है। इतने पर भी बिक्री की मांग अत्यंत धीमी रहने से उसका प्रचार प्रसार कैसे हो। महंगे मूल्य की बढ़िया सजधज वाली पुस्तकें छापी जाएं तो उन्हें या तो सरकारी शिक्षा तंत्र के ऊपर अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर थोपा जा सकता है या फिर कोई संपन्न अपनी अलमारियों की शोभा बढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। यह समूची विडंबना भी ऐसी है जिसके कारण लेखन, प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय आदि सभी ओर से अवरोध खड़े हो जाते हैं। आवश्यकता हर भाषा में स्थानीय मन, स्थिति और परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाने वाले साहित्य सृजन की है। कठिन और असंभव दिखने वाले इस माध्यम को सर्वत्र निराशा दीख पड़ने पर भी इन्हीं दिनों आरंभ कर भी दिया गया है। 1,00,000 अध्यापकों द्वारा विद्या विस्तार का श्री गणेश। युग साहित्य के विक्रय को महत्व न देते हुए सोचा गया है कि उसे हर शिक्षित को पढ़ाने और हर अशिक्षित को सुनाने की एक ऐसी योजना अपनाई जाए जो अन्यत्र कदाचित ही कहीं और क्रियान्वित होती देखी जाती है। युग शिल्पियों में से प्रत्येक को कहा गया है कि वे न्यूनतम 20 पैसा नित्य का अंशदान और 2 घंटे का समयदान प्रस्तुत ज्ञानघट के लिए नियमित रूप से दें। इस पैसे से हर महीने नया छपने वाला साहित्य खरीदते रहें। उसे स्वयं तो पढ़ें ही, परिवार वालों को तो पढ़ाएं या सुनाएं ही। झोला पुस्तकालय योजना के अंतर्गत अपने परिचय क्षेत्र में शिक्षितों से संपर्क साधें और युग साहित्य बिना मूल्य घर बैठे पहुंचाने, पढ़ लेने पर वापस लेने एवं अगली पुस्तकें पढ़ने के लिए देने का भी क्रम चलाएं। यह सिलसिला सदा सर्वदा चलता रह सकता है। पढ़ने वाला बिना पढ़ों को सुनाता भी रह सकता है। 2 ऐसे व्यक्ति साथ जुड़े तो 100 शिक्षित सदस्यों को पढ़ाकर, 200 बिना पढ़ों को सुनाकर 300 की एक मंडली बना सकते हैं। उसका सुसंतुलन एक युग शिल्पी के 20 पैसे नित्य और 2 घंटे समयदान के माध्यम से बिना किसी कठिनाई के गतिशील रह सकता है। यह सारा साहित्य संचालक की घरेलू लाइब्रेरी से लेकर स्वजन संबंधी परिचित पड़ोसी बिना किसी प्रकार का खर्च किए दीर्घ काल तक पढ़ते और पढ़ाते रह सकते हैं। कहने सुनने में योजना अटप लगती है पर कार्य करने वाले के लिए इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। शांतिकुंज के साथ जुड़े हुए लोगों में अधिकांश इस प्रक्रिया को धर्म कर्तव्य एक उच्च स्तरीय परमार्थ समझकर श्रद्धापूर्वक अपनाए रहते हैं। इस आधार पर युग साहित्य के पाठकों की संख्या करोड़ों तक पहुंच चुकी है, भले ही उसे खरीदने वालों की संख्या सीमित ही रही हो। अखंड ज्योति अपने मिशन की प्रमुख हिंदी मासिक पत्रिका है। वह अन्य भाषाओं के अनुवादों समेत प्रायः 5,00,000 की संख्या में छपती है। इनके पाठकों को निर्देश है कि हर अंक प्रायः 5 के द्वारा पढ़ा या सुना ही जाए। इस प्रकार 500,000 पत्रिका प्रायः 25,00,000 पाठकों द्वारा पढ़ी या सुनी जाती है। मिशन के सूत्र संचालक इसी को अपनी संरचनात्मक संपत्ति मानते हैं और पूरा पक्का विश्वास जताते हैं कि इतनी भुजाओं के बलबूते समय की मांग का एक बड़ा भाग निश्चित रूप से पूरा किया जा सकेगा। प्राचीनकाल के विद्या विस्तारक न केवल छात्रों को पढ़ाकर छुटकारा पा जाते थे, वरन उन्हें ढूंढने, इकट्ठा करने, उत्साह भरने के कार्य दूसरों की सहायता की अपेक्षा किए बिना भी अपने बलबूते ही कर लेते थे। साधनों की, सहयोग की अपेक्षा तो हर काम में रहती है। विद्या विस्तार में उसके बिना ही काम चल जाए, यह नहीं हो सकता। इतने पर भी यह निश्चित है कि समर्थ चुंबक अपने इर्द गिर्द बिखरे लौह कणों को खींचने, घसीटने और अपने साथ चिपका लेने में अकेली क्षमता के बलबूते भी सफल होकर रहता है। विद्या विस्तार की अभिनव योजना के क्रियान्वयन में भी इसी तथ्य को मान्यता देते हुए समूचा ताना बाना बुना गया है। 25,00,000 शिरों और 50,00,000 भुजदंडों में से अधिकांश निष्क्रिय निरुत्साहित रहे, संकीर्ण स्वार्थपरता की कीचड़ से इस आपत्तिकाल की पुकार सुनकर भी बाहर न निकले, तो भी विश्वास किया गया है कि न्यूनतम 1,00,000 परिजनों को तो युग चेतना का आलोक वितरण करने के कार्य में जुटाया ही जा सकेगा। यह विश्वास भावुक कपोल कल्पना के आधार पर नहीं उभरा है। अब तक प्रायः 80 वर्ष भी जी लेने और निरंतर सेवा संगठन में निरत रहने पर जो अनुभव एकत्रित किए हैं, उनकी साक्षी एवं छत्रछाया में यह पूरी पूरी गुंजाइश है कि युग शिल्पियों का पूरा समय न निकाल सके तो भी 2-4 घंटे आसानी से निकाले और आपत्तिकालीन आवश्यकता में लगाए जा सकते हैं। समयदान, अंशदान, यह दो अनुबंध ऐसे हैं जिन्हें प्रज्ञा परिजनों के लिए अपने अपने क्षेत्र में नियोजित किए रहना एक प्रकार से अनिवार्य कर दिया गया है। भावना शून्य निष्ठुरों की संकीर्णता ही इतनी बोझिल रहती है कि उसके रहते व्यस्तता अभावग्रस्तता का बना बनाया व गड़ा गड़ाया बहाना सदा सर्वदा एक रस बना रहता है, उन पर दूसरों का हड़पने भर की हविस छाई रहती है। अपना देना तो मानो वज्रपात की तरह असह्य हो। ऐसे लोग अपने परिवार में भी हो सकते हैं, पर यह विश्वास किया गया है कि 25,00,000 में से 1,00,000 ऐसे अवश्य निकल आएंगे जो इस आपत्तिकाल में 20 पैसे और 2-4 घंटे नित्य का समय लोकमंगल के लिए लगाते रह सकें। यह समय और पैसा अपने ही संपर्क क्षेत्र में विद्या घटाव विस्तार में खर्च किया जाना है, किन्हीं अन्य को देने की आवश्यकता नहीं है। अपने हाथों अपना समय और पैसा खर्च करने में इस बात की आशंका नहीं रहती कि कहीं कोई ठग तो नहीं रहा है। सेवा साधना का यह क्रम अपनाकर आरंभ से ही 1,00,000 अध्यापक प्रति 100 के हिसाब से 1,00,00,000 छात्रों से संपर्क साधने और उन्हें नवयुग के अनुरूप प्रेरणा देने में समर्थ हो सकेंगे। यदि आशा से अधिक परिणाम निकलने आरंभ हो गए तो 500,000 परिजन 5,00,000,000 को भी झकझोरने, हिलाने, घसीटने और उठाकर खड़ा कर देने में समर्थ हो सकते हैं। यही बात यदि संपर्क क्षेत्र के वर्तमान 25,00,000 परिजनों तक लागू होने लगे तो समझना चाहिए कि 25,00,000,000 को विद्यादान करने का सिलसिला चल पड़ा। अपने घर परिवार की परिधि के भीतर क्या हो सकता है, यह अनुमान लगाते हुए यह सब सोचा जा रहा है, पर इतना ही छोटा अनुबंध बंधा रहे यह संभव नहीं। जब चोर उचक के नशेबाज, गुंडे, उच्छृंखल, व्यभिचारी अपने अपने संपर्क में कितनों को ही नए सिरे से प्रभावित करते और साथी सहयोगी बनाते देखे गए हैं, तो कोई कारण नहीं कि उच्च उद्देश्यों पर सच्चे मन से निष्ठा रखने वाले, चिंतन को क्रिया के साथ जोड़ने वाले यदि उमंगों में लहराने लगे तो अपने जैसे अनेकों को खींच घसीट न सके, परिवार को बढ़ा न सके। प्रज्ञा परिजनों को 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 बनने के लिए प्रयत्नशील होने के लिए पूरी तरह उकसाया गया है। 1 से 5 की गुणन प्रक्रिया यदि सचमुच पिल पड़े तो 4-5 छलांगों में ही देश की 80 करोड़ जनता को सृजन चेतना से अनुप्राणित किया जा सकता है। चूंकि अपना आंदोलन सार्वजनीन, सार्वभौम, सभी जातियों और सभी मान्यताओं वालों के लिए समान रूप से खुला है, तो किसी संकुचित क्षेत्र तक सीमित रहने की आशंका तो रहती ही नहीं। निष्कर्ष यही निकलता है कि युग चेतना सूर्य किरणों की तरह आरंभ कहीं से क्यों न हो, अंततः विश्वव्यापी बनकर रहेगी। संजीवनी विद्या को व्यापक बनाया जाए। यहाँ चर्चा जीवंतों और प्राणवानों की हो रही है, जिनके लिए अपनी गाड़ी धकेलने में कोई हैरानी नहीं पड़ती और जो दूसरों को सहारा दे सकने में भी समर्थ हैं। भेड़ तक उनका उपहार लिए प्रस्तुत रहती हैं, पेड़ों को अपनी पत्तियों, लकड़ियों और फल फूलों की संपदा बांटने में संकीर्णता नहीं होती। फिर मनुष्य में तो उदारता का कुछ अंश होना ही चाहिए। सोचते हैं कि 1,000 पीछे एक तो ऐसा होगा ही जिसे मानवीय गरिमा का स्मरण हो और जो भलाई करने व विकृतियों के निराकरण में किसी न किसी काम आए। 8 घंटे कमाने, 7 घंटे सोने और 5 घंटे जिधर तिधर भागदौड़ करते रहने के लिए सुरक्षित रख लिए जाएं, तो भी 20 घंटे में दिनचर्या भली प्रकार निभ जाती है। चार घंटे परमार्थ प्रयोजनों में निरंतर लगाते रहने के लिए उनके पास भी बच जाते हैं, जो रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने के लिए विवश हैं। ऐसों के अतिरिक्त उन सरकारी पेंशनरों की संख्या कम नहीं, जो मात्र 55 वर्षों में ही पेंशन ले लेते हैं और कम से कम 80 वर्ष की आयु तक शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करने की स्थिति में रहते हैं। यदि वे अंतरात्मा की पुकार सुन सके तो युगधर्म की चुनौती स्वीकार करने में अपने बचे जीवन को बिना किसी कठिनाई के लगा सकते हैं। जिनके लड़के बच्चे कमाने लायक हो गए, उनमें से भी असंख्य निष्क्रिय जीवन बिताने लगते हैं, आवारागर्दी में समय गुजारते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने पिछले दिनों पर्याप्त पैसा कमा लिया अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त प्रचुर संपत्ति हथिया ली। यदि वे चाहें तो इस संपदा को बैंक में जमा करके उसके ब्याज से शेष जीवन एवं बच्चों का उत्तरदायित्व भली प्रकार पूरा कर सकते हैं। इनके पास समय ही समय है। यदि उसका मन कीचड़ में उगने वाले कमल की तरह तनिक ऊंचा उठ सके, आदर्श और चिंतन की ओर मुंह मोड़ सके, तो समझना चाहिए कि युग प्रशिक्षकों की एक नई सेना मोर्चे पर आ खड़ी हुई। साधु ब्राह्मण व पुरोहित वर्ग तो धर्म के आधार पर आजीविका अर्जित करता है, उसके लिए तो अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है कि नमक हलाल तो कहलाता ही रहे। भजन करने का बहाना तो ऐसा नहीं है जिसकी आड़ में जनसाधारण की श्रद्धा और संपदा का दोहन किया जाता रहे। महिलाओं में से भी कुछ न कुछ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें रसोईदारन, चौकीदारन तथा धोबिन स्तर के कामों में थोड़ी फुर्सत मिल सकती है। वे युगधर्म की मांग में अपना थोड़ा बहुत समयदान, अंशदान तो लगा ही सकती हैं। विधवाओं परित्यक्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी जिस तिस की बेगाड़ भर करता रहता है, जिनके विवाह सामाजिक विडंबनाओं ने संभव नहीं होने दिए अथवा जिनके मन में अपने पिछड़े समुदाय के प्रति किसी कोने में दर्द है, वे प्रायः अविवाहित ही रह जाती हैं। निराश्रित होने पर नौकरी करती और उस कमाई को भाई भतीजों पर उड़ेलती रहती हैं। ऐसी देवियां यूं अपने को दुर्भाग्यग्रस्त मानती हैं, पर वे वस्तुतः सौभाग्यवती हैं जिन्हें बंदी दासी का जीवन जीने की विवशता से भगवान ने बचा लिया। घर में बहुएं आ जाने पर तो सास वर्ग महिलाएं प्रौढ़ होते हुए भी काम धंधों से छुटकारा पा जाती हैं। संपन्न परिवारों में अच्छी कमाई होने के कारण नौकर चाकर सब काम कर देते हैं, घर की महिलाओं के पास तो टी हुई देखने, रेडियो सुनने, उपन्यास पढ़ने जैसे बेकार काम ही समय काटने के लिए शेष रह जाते हैं। यह वर्ग भी इतना बड़ा है जो चाहे तो महिला उत्कर्ष के लिए बहुत कुछ कर सकता है। महिला समुदाय के उपर्युक्त वर्ग ऐसे नहीं है जो काम की अधिकता की बात कहकर महिला उत्थान की सामयिक महत्ता आवश्यकता को नकारने के लिए कोई समझ में आ सकने योग्य बहाना गढ़ सकें। इस समय प्रजनन के भार से धरती त्राही त्राही कर रही है और समाज का ढांचा बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। ऐसे आपत्ति काल में जो नर नारी बच्चे जनने से हाथ सिकोड़े, उन्हें समझदारों और दूरदर्शियों में गिना जा सकता है। यदि ऐसा कहीं संभव हो, वहीं यह संभावना साकार होती है कि दोनों एक एक मिलकर 11 का उदाहरण बने, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में सहायता करें। बच्चों का झंझट न होने पर दोनों मिलकर युग धर्म का निर्वाह कर 11 गुना काम कर सकते हैं। प्रसव पीड़ा में 13% महिलाएं मर जाती हैं और बड़ी संख्या में आजीवन रुग्णता दुर्बलता का शिकार बनती हैं। उन पतियों पर लानत की धूल कौन फेंके जो पत्नी के आधी जिंदगी अर्धमृतकों के स्तर की व्यतीत करने के लिए बाधित करते हैं, अपना अर्थ भार दुगुना चौगुन बढ़ाते हैं, सुसंस्कार दे सकने की योग्यता न होने पर बच्चों को कुसंस्कारी बनाते हैं और समाज के लिए असंख्य समस्याएं खड़ी करते हैं। यदि बच्चे उत्पन्न करने की सामयिक मूर्खता से बचा जा सके तो इन दिनों भी अनेक महिलाएं नारी उत्कर्ष के कार्य में जुट सकती हैं और अपने संपर्क क्षेत्र में एक प्रकार से अभिनव क्रांति उत्पन्न कर सकती हैं। प्रश्न व्यस्तता अभावग्रस्तता आदि का नहीं वरन एक ही है कि जन जन पर कृपणता, निष्ठुरता, घिनौनी स्वार्थपरता के रूप में शैतान ही छाया है। वही आदर्शों के निमित्त कुछ संयम बरतने और परमार्थपरक सेवा साधना करने के मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा होता है। यदि किसी प्रकार उसे घटाया हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि शिक्षित अशिक्षित स्तर के कोई भी नर नारी किसी न किसी हद तक योग अध्यापक की छोटी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि ऐसा माहौल बन सके तो समझना चाहिए कि महाकाल की महती आवश्यकता का एक बड़ा अंश सरलतापूर्वक संपन्न हो गया। कोई समय था जब सभी देवालय, गुरुकुल, आरण्यक, आश्रम, तीर्थ इसी एक काम में अपनी क्षमता नियोजित किए रहते थे। उनमें बड़ी संख्या में ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि व ऋषि मनीषी रहा करते थे और वहां पहुंचने वालों को उनकी योग्यता एवं परिस्थिति के अनुरूप इस प्रकार का शिक्षण दिया करते थे ताकि हर आगंतुक को ऊंचा उठने और आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। यही कारण था कि बालकों से लेकर वृद्धों तक के संजीवनी विद्या का ज्ञान रहता था और वे उसका अनुकरण करते हुए उस स्तर के बनते थे जिन्हें सच्चे अर्थों में देवमानव कहा जा सके। ऐसे लोग जहां भी बसेंगे वह धरती सहज ही स्वर्गोपम कही और समझी जाने लगेगी। ऐसा वातावरण पुरातन काल में तो था ही, अब उसी प्रक्रिया को फिर अपनाया जाने लगे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि सतयुग की वापसी होकर रहेगी। प्रश्न शिक्षा पद्धति एवं शिक्षकों का है, उसे शांतिकुंज ने पूरा करने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए स्वाध्याय सत्संग का ही नहीं, उन छोटे बड़े आयोजनों समारोहों की भी व्यवस्था बनाई गई है जिनके आकर्षण से जनसमुदाय को एकत्रित और प्रशिक्षित किया जा सके। महाविद्या का उदय और अभ्युदय। अग्नि की ऊर्जा जहां भी उत्पन्न होती है वहां वह समीपवर्ती वातावरण को ऊर्जायुक्त बनाए बिना नहीं रहती है। सुगंध का भी यह उपक्रम है, वह जहां भी रखी जाती है समीपवर्ती क्षेत्र में भी वैसी ही गंध फैलाती रहती है। विद्या के संबंध में भी यही समझा जाना चाहिए। गंगा भले ही एक चट्टान पर उतरी हो पर उसकी जलधारा दूर दूर तक शीतलता सरसता का विस्तार करती है। यूं दुर्बुद्धि भी अपने समीपवर्तियों को लपेट में लेती है, किंतु सदाशयता का अपना विशेष क्षेत्र और स्वभाव है। वह मलयानिल की तरह दूर दूर तक अपने प्रभाव का परिचय देती है। सूर्य का प्रकाश भी धरती के हर कोने में पहुंचता रहता है। प्रज्ञा का स्वभाव भी इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने का है। 20वीं सदी में विज्ञान को आगे रखकर किए गए अनाचारों पर नियमता को बहुत क्षोभ है। वे अधिक समय उस अवांछनीयता को उसी रूप में बनी नहीं रहने देना चाहते। यों व्यापक परिवर्तनों की तैयारी हो चली है। 21वीं सदी के उज्ज्वल भविष्य की संरचना इसी आधार पर होने जा रही है। इस प्रक्रिया का प्रमुख कार्य एक ही होगा जिसे प्रज्ञायुग का अवतरण कह सकते हैं। विचार क्रांति, ज्ञानयज्ञ जैसे नाम भी इसी को दिए गए हैं। यदि इसी को विद्या विस्तार कहा जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। उदरपूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली विविध जानकारियों का भानुमति वाला पिटारा सिर पर लादे हुए शिक्षा दिन दिन प्रगति करती जा रही है। उसे बेचने वाली दुकानें गली मोहल्लों गांव नगरों में तेजी से खुलती चली जा रही हैं। अध्यापकों की विशाल संख्या उसी प्रयोजन के लिए नियुक्त निरत है। छात्रों की भी कमी नहीं, वे नौकरी पाने की लालसा में बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। कभी तो प्रवेश मिलना तक कठिन हो जाता है। जो सफल नहीं हो पाते, नौकरी नहीं पा पाते, वे निराशा और खींच से उद्विग्न ऐसी होकर राह पकड़ते देख गए हैं जिसे अनुचित और अवांछनीय ही कह सकते हैं। प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली की अपूर्णता को देखते हुए क्रमशः उनके प्रति क्षोभ भी बढ़ता जाता है। प्रस्तुत अनौचित्य से निपटने और औचित्य को सक्रिय करने के लिए जिस विद्या की इन दिनों महती आवश्यकता है, 21वीं सदी के साथ साथ दिग्दिगंत को आलोकित करने के लिए वह उषाकाल की तरह उभरती चली जा रही है। उसका विस्तार होना ही है, उसे व्यापक बनना ही है। शिक्षा के लिए साक्षरता के संपादन की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु विद्या के साथ जुड़ी हुई आदर्शवादी उत्कृष्टता तो सीधे अंतःकरण में उतर जाती है। निरक्षरता भी उसमें बाधक नहीं होती। शालीनता, सज्जनता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता के सिद्धांतों को हृदयंगम करने के लिए साक्षरता अनिवार्य नहीं है। क्षेत्र विस्तार को देखते हुए इस सरंजाम को जुटाने के लिए बड़े परिणाम में प्रयत्नशीलता अपनानी होगी। प्रश्न किसी क्षेत्र या देश का नहीं, वरन समूचे संसार को इसी की प्यास है। इस संदर्भ में शिक्षित अशिक्षित, निर्धन और धनाध्यक्ष, सेवक और स्वामी, नर और नारी, प्रायः सभी स्तर के लोग संसार भर में एक जैसी रटन लगाए हुए हैं। सभी एक जैसी तृष्णा और आवश्यकता अनुभव करते हैं। मान्यताओं, भावनाओं और आदतों में अनौचित्य का समावेश हो जाने से अगणित समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। गंदगी की सड़न से अवांछनीय स्तर के कृमि कीटक उपजते हैं और बीमारियों के विषाणु टिड्डी दल की तरह दौड़ पड़ते हैं। कुरूपता और दुर्बलता तो उनके साथ जुड़ी ही रहती है। यही है दुर्गति की स्थिति जो हर जगह न्यूनाधिक मात्रा में देखी जा सकती है। समाधान, निराकरण इसी का होना है। अस्तु न केवल कचरे को बुहारना होगा, वरन उस स्थान पर चूने की पुताई, गोबर की लिपाई अथवा फिनाइल जैसे कृमिनाशकों की छिड़काई भी आवश्यक होगी। यह दोनों कार्य विद्या विस्तार से ही संभव हैं। यहाँ विद्या शब्द का सही अर्थ भी समझना होगा। वह साक्षरता तक सीमित नहीं है, वरन दूरदर्शी विवेकशीलता और ममतामय भाव संवेदना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ती है। विद्या के लाभ परोक्ष हैं। उसके सहारे विवेक उभरता है, नीर क्षीर विवेक के राजहंसों जैसी प्रवृत्ति उभरती है, व्यक्तित्व परिष्कृत होता और प्रतिभा निखरती है। संपन्नता भले ही सीमित रहे पर शालीनता इतनी ऊंचाई तक उठ जाती है जिसे देव मानव की संज्ञा मिल सके, जिसके धारणकर्ता को नर रत्नों में गिना जा सके। सुधारक उद्धारक ऐसों को ही समझा जाता है। यह सभी विशेषताएं उद्देश्य स्तर की होती हैं, इसलिए औसत आदमी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। आत्मसंतोष, लोकसम्मान और दैवी अनुग्रह की महान महत्ता के संबंध में जिनने कभी सुना समझा तक नहीं, वे भला उसे पाने के लिए ही क्यों प्रयत्न करेंगे। इन दिनों तो पैसा ही परमेश्वर बना हुआ है। अहंकार का उन्माद इस कदर छाया हुआ है कि उसके लिए समय, श्रम और साधनों को बड़ी से बड़ी मात्रा में निछावर करने के लिए लोग आकुल व्याकुल देख गए हैं। वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त जब और कुछ सूझ ही न पड़े, लिप्सा लालसा और तृष्णा की ललक जब गहरी खुमारी के रूप में चढ़ी हुई हो, तो विद्या के ब्रह्म, विद्या के आत्मज्ञान के स्वर्गीय दृष्टिकोण एवं जीवन मुक्ति जैसे उच्च स्तर के संबंध में कोई सुने समझे भी क्यों, उस दिशा में कुछ करने एवं नियम बनाने की बात तो बहुत पीछे आती है। जो हो, आज का गुजारा भले ही इस सड़ी कीचड़ में लोटपोट करते हुए भी हो सकता है, पर कल स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना उद्धार निस्तार भी तो नहीं। इतने पर भी यह भूल नहीं जाना चाहिए कि कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, साथ ही दुरूह भी। उसे संपन्न करने में मानवीय प्रयत्न तो एक सीमा तक ही सफल हो सकते हैं। प्रश्न समूचे संसार का है। समस्या 600 करोड़ मानवों की है। उनका प्रवाह उल्टी दिशा में चल रहा है। वे ऐसे अंधड़ के साथ उड़ रहे हैं जो कभी भी कहीं भी करारी पटकनी दे सकता है और हड्डी पसली तोड़ डालने जैसा संकट खड़ा कर सकता है, इसलिए प्रचलन का परिवर्तन एक प्रकार से अनिवार्य हो गया है। 600 करोड़ मनुष्यों का चिंतन प्रवाह मानवीय मर्यादाओं के उल्लंघन का अभ्यस्त हो चले, चिंतन में निकृष्टता और चरित्र में भ्रष्टता का अनुपात असाधारण रूप में बढ़ चले, तो उस विशाल कार्य क्षेत्र में लगभग पूरी तरह उलट देने का कार्य नियंता की नियति ही कर सकती है, भले उसे संपन्न करने में किन्हीं व्यक्तियों को श्रेय सौभाग्य पाने का अवसर मिलने लगे। विद्या की गरिमा का महात्म्य बताते हुए आप जिन्होंने बहुत कुछ कहा है, विद्यामृतमश्नुते, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या ददाति विनयम, आदि आदि मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव में, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जो उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश कर सके, वही विद्या है। संजीवनी विद्या भी इसी का नाम है। कई व्याख्याकार इसे जीवन जीने की कला कहते हैं। इसी के साथ सुख, शांति और प्रगति के सभी सूक्ष्म तंतु जुड़े हुए माने जाते हैं। इसकी उपेक्षा करने पर न भौतिक प्रगति संभव होती है, न आध्यात्मिक उन्नयन की बात बनती है। जले दीपक ही बुझों को जलाएंगे। कथा है कि महाप्रलय के दिनों सर्वत्र समुद्र का खारा पानी ही भरा पड़ा था। उसकी तली में गहरी कीचड़ भी भरी हुई थी। उसी बीच एक चमत्कार हुआ। पानी के ऊपर एक कमल उभरकर खिलाया। उसमें सहस्र पंखुड़ियां थीं। बात इतने पर ही समाप्त नहीं हुई। कमल के मध्य पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वे वेदज्ञान से सृष्टि को गुंजित करने लगे। साधन और सौंदर्य उसी गुंजन के प्रभाव से उभरे जुड़े और चेतन सृष्टि उसी प्रयास के फलस्वरूप विनिर्मित हो चली। पौराणिक मिथक की वास्तविकता के संबंध में दो मत हो सकते हैं, पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने समय की विपन्न परिस्थितियों में चमत्कार जैसा उद्भव होने ही वाला है। सहस्रदल खिलने ही वाला है। उसमें ब्रह्म चेतना का ऐसा प्रवाहनी सृत होने वाला है जो उल्टे को उलटकर सीधा कर सके, सुखद संभावनाओं को अभिनव सृजन स्तर का बन पड़े, जिसे कीचड़ से उभरा कमल कहा जा सके। 21वीं सदी के आरंभिक बुलबुले शांतिकुंज की जमीन को फोड़कर उभरने और उबलने लगे हैं। अगले दिनों यह एक निर्झर के रूप में गति पकड़ ले तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हल्की भाप आरंभ में धीरे से उठती है, पर कुछ ही समय में घटा टोप बनकर बरसने लगती है। इसे आश्चर्य नहीं तो और क्या कहें। राय जितने छोटे बीज का विशाल वट वृक्ष के रूप में सुविस्तृत हो जाना क्या कोई कम आश्चर्य की बात है। यह अपनी सृष्टि ऐसे ही आश्चर्यों का प्रदर्शन पग पग पर करती है। सच तो यह है कि संसार में जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसे सृष्टि चमत्कारों की श्रृंखला के अतिरिक्त और कुछ कहा नहीं जा सकता। बाल की नोक जितना क्षुद्र शुक्राणु यदि 5.5 फीट का सर्वांग सुंदर मनुष्य बन सकता है, तो चमत्कार के अतिरिक्त और कहा क्या जाए। ग्रह नक्षत्र अधर में टंगे हैं और द्रुतागति से घूमते रहते हैं, तो इसे अघटित का घटित होने के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। मनुष्य स्वल्प है, उसकी सामर्थ्य भी सीमित है, उसकी सूझबूझ, प्रयत्नशीलता और सफलता भी सीमित स्तर की ही बनकर रह जाती है, पर भगवान के संबंध में यह बात नहीं है। वे देखते देखते ऋतुओं में ऐसा परिवर्तन करके रख देते हैं कि उस अलौकिकता को देखकर हतप्रभ ही होकर रह जाना पड़ता है। मनुष्य यदि ऐसा करना चाहे तो भी उसका पुरुषार्थ वैसा बन ही नहीं पड़ेगा। अवतारों की पूर्ण श्रृंखला का अवगाहन करने पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि उनका अवतरण असंभव से संभव कर दिखाने के लिए ही होता रहा है। यूं निराकार होने के कारण वे प्राणियों की तरह प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं कर पाते, फिर भी मनुष्यों में से ही ऐसे कितनों का चयन कर लेते हैं जिन्हें हवा भर कर नन्हे से गुब्बारे को कद्दू जितना विशाल बनाया जा सके। हनुमानों, अंगदों, अर्जुनों, नारदों, बुद्धों, गांधियों आदि की इतनी बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी ऐसे महान प्रयोजन पूरे कर दिखाए जिन्हें अद्भुत और अलौकिक कहा जा सके। एक बार तो महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि की तुलना में दूसरी नई सृष्टि रच डालने के लिए कमर कस ली थी। ऐसे मामले बुद्धि द्वारा मुश्किल से ही सुलझाए जा सकते हैं। अगस्त्य ऋषि ने 3 चुल्लू में समूचा समुद्र सोख लिया था। ऐसे कृत्यों के पीछे यदि भगवान की शक्ति काम करती दिख पड़े तो उसे आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। लंबा समय दुर्मति जन्य दुर्गति सहन करते करते बीत गया। अब यदि उलट पुलट कर सही स्थिति में ला देने की योजना बनी है तो उसे इसलिए असंभव नहीं मान लेना चाहिए कि मनुष्यों के सीमित प्रयास इतने सुविस्तृत कार्य को नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए कुछ भी कितना ही कठिन हो सकता है, पर जिसने आकाश में असंख्य ग्रह तारक झाड़ फानूस की तरह अधर में लटका रखे हैं, उसके लिए किसी सदाशयता भरे प्रयोजन को पूरा कर सकना कैसे कुछ कठिन हो सकता है। छोटा आरंभ उपहासास्पद तो लगता है, फिर भी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि वह कुछ ही समय में कहीं से कहीं जा पहुंचे। बुद्ध और गांधी के आंदोलन आरंभ में नगण्य स्तर के ही थे, पर जब समय ने साथ दिया तो क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी महान हुई कि उसे देखते हुए आश्चर्यचकित ही रह जाना पड़ता है। युगसंधि महापुरुष चरण शांति कुंज में विगत 2 वर्षों से चल रहा है। उसकी शाखा प्रशाखाओं के रूप में हजारों स्थान और लाखों मनुष्य अनुप्राणित हो चले हैं। अब इस वर्ष से युग शिल्पियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया बड़े रूप में चल पड़ी है, ताकि धीमी गति से चल रहे प्रयासों को रॉकेट स्तर की तेजी उपलब्ध हो सके। पिछले वर्ष 9-9 दिन के और 1-1 महीने के प्रशिक्षण सत्रों की श्रृंखला चलती रही है, पर इस बार उसे ऐसी गति प्रदान की गई है जिससे लंबी अवधि में संपन्न हो सकने वाले कार्य अपेक्षाकृत 4-6 गुनी गति से अग्रगामी बन सके और उन्हें सन 2000 तक के आगामी वर्षों में पूरा किया जा सके। विद्यालयों की इमारतें बनती हैं, फर्नीचर इकट्ठा किया जाता है, पर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सुयोग्य अध्यापकों का चयन हो और उन्हें अपने काम पूरा करने की ललक निरंतर बेचैन किए रहे। इसके बाद अन्य कार्य तो सरलतापूर्वक संपन्न होते रहते हैं। सन 90 के वसंत पर्व से शांतिकुंज में सघन शक्ति उत्पन्न करने के अतिरिक्त उपयुक्त विद्या चेतना के धनी और समर्थ शक्तिशाली अध्यापक प्रशिक्षित विनिर्मित करने का कार्य आरंभ किया गया है। अखंड ज्योति के 5 लाख परिजनों को प्रशिक्षित करने का कार्य सर्वप्रथम हाथ में लिया गया है। स्थान भी इन्हीं दिनों कुछ बढ़ाया गया है। शांतिकुंज में निवास, भोजन, साधन आदि की व्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में प्रायः दूनी बढ़ाई गई है, पर फिर भी आवश्यकता को देखते हुए उसे कई गुनी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। थोड़ा धैर्य रखने पर उसकी पूर्ति हो जाने की संभावना है। अधिक लोगों को कम समय में प्राण चेतना से अनुप्राणित करना हो तो इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता कि शिक्षा अवधि को जितना कम करना संभव हो उतना कर लिया जाए। न्यूनतम की बात सोचे तो वह अवधि 5 दिन से कम कदाचित संभव नहीं हो सकती, इसलिए चालू प्रशिक्षण सत्रों को 5-5 दिन का कर दिया गया है। तारीख 1-5, 7-11, 13-17, 19-23, 25-29। इस प्रकार हर महीने 5 सत्र निरंतर संपन्न होते रहेंगे। शिक्षा की दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण शिक्षण के लिए यह अवधि बहुत ही कम है, पर जब प्राण प्रत्यावर्तन का हो, आदान प्रदान की व्यवस्था को ही प्रमुख माना गया हो, तो कान में कुछ देर की फुसफुसाहट भी बड़े प्रयोजनों को पूरा कर देती है। सीखने और सिखाने वाले दमदार हों तो रामायण की यह उक्ति भी चरितार्थ हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, अल्पकाल विद्या सब आई। मूर्छना का पुनर्जागरण अनिवार्य है। विश्वव्यापी परिवर्तन और सृजन का दोहरा प्रयोजन पूरा करने के लिए साधारणतया शताब्दियों और सहस्राब्दियों का समय चाहिए, पर अब उतनी प्रतीक्षा की गुंजाइश रह नहीं गई है। अग्निकांड के समय में लंबी अवधि में पूरी हो सकने वाली योजना नहीं बन सकती। उस अनर्थ को रोकने के लिए धूल, पानी आदि जो कुछ भी मिल सके उसी के सहारे वह कार्य हाथों हाथ संपन्न करना पड़ता है। सहमत और उत्सुक छात्रों को पढ़ा देना कठिन नहीं है, पर जो गलती को ही सही मानने का दुराग्रह अपनाए बैठा हो उसे समझा सकना असंभव तो नहीं, पर कष्टसाध्य अवश्य है। इन दिनों विचार परिवर्तन के सहारे युग परिवर्तन करने के लिए ऐसे प्रशिक्षक चाहिए जो न केवल वार्तालाप, शंका समाधान एवं प्रवचनों द्वारा आवश्यक जानकारी दे सकें, वरन अपनी प्राण प्रतिभा का प्रयोग करके उल्टी मान्यता और क्रिया प्रक्रिया को बलपूर्वक सीधी कर सकें। प्राचीन काल में वातावरण अनुकूल था, तब उस प्रमुख प्रयोजन के लिए आवश्यक संस्थानों के लिए इमारतें भी आसानी से बन जाती थी। गांव-गांव छोटे छोटे देवालय होते थे जिन्हें पुरोधा संभालते थे और दैनिक कथा वार्ता एवं पर्व संस्कार आदि विशेष अवसरों पर जनसमुदाय के जनमानस की विकृतियों को सुधारते और सदाशयता के बीजांकुर इस प्रकार जमाते थे जिससे वे समयानुसार फल फूलों से लदे सुंदर सुहावने वृक्ष बन सकें। बच्चे की शिक्षा पाठशालाओं में होती थी, ग्राम पुरोहित उनका सूत्र संचालन करते थे, यजमान उनकी निर्वाह सामग्री समय समय पर भिजवाते रहते थे। जिनके लिए अन्न वस्त्र ही पर्याप्त हों उनके लिए खर्च ही कितना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के बदले मुट्ठी भर अन्न देते रहना किसी को भारी नहीं पड़ता था। छात्रों को शिक्षा और विद्या का दोहरा लाभ बिना किसी अड़चन के मिलता रहता था। बड़ी कक्षाओं के लिए गुरुकुल थे जिनमें छात्रों के लिए न केवल उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था रहती थी वरन भोजन वस्त्र जैसी व्यवस्थाओं का तारतम्य भी बना रहता था। अध्यापकों, उपाध्यायों, मनीषियों, वानप्रस्थों की शिक्षा आश्रम आरण्यकों में होती थी। वयोवृद्ध मनीषियों का सामयिक चिंतन और निर्धारण बुद्धिजीवी आश्रमों में चलता रहता था। पुस्तकों की संरचना और अनुवाद व प्रतिलिपि लेखन भी उपर्युक्त संस्थानों में संपन्न हो जाता था। उपर्युक्त सभी शिक्षण संस्थानों में न केवल बौद्धिक वरन व्यवहारिक शालीनता के अभ्यास का अवसर भी मिल जाता था। विदेशों में ज्ञान चेतना जगाने के लिए परिव्राजकों के लिए विश्वविद्यालय बने हुए थे। वहां से परिपक्व होकर ऋषिकृत परिव्राजक देश देशांतरों में निकल जाते थे और जहां जिस प्रकार से सद्ज्ञान की आवश्यकता समझी जाती थी वहां वैसा ही अध्यापन तंत्र खड़ा कर देते थे। सर्वविदित है कि कुमारजीव जैसे महामनीषियों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, मंचूरिया आदि पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवजीवन का संचार किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के महामनीषी कौंडल्य ने दक्षिण पूर्व के क्षेत्र तिब्बत, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंपुचिया, जावा, सुमात्रा आदि को देव संस्कृति का केंद्र बना दिया था। समय का कुचक्र ही कहना चाहिए कि आज वह समूचा तंत्र पुरातन इमारतों के ध्वंसावशेष के रूप में जहां तहां अपने पूर्व अस्तित्व का परिचय भर देता है। लोकरुचि उस प्रंग से हट गई, न पुरोहित रहे, न लोकमानस को जीवंत जागृत रखने वाले पुरोधा। साधु ब्राह्मणों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है, पर जिन्हें अपने शाश्वत कर्तव्यों का ज्ञान है तथा उस प्रकार का कुछ करते भी हैं, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही मानी जा सकती है। युग ऋषियों का उत्पादन निर्माण कहाँ होता है, उस स्थान को ढूंढ पाना भी शोध का विषय बन गया है। न वैसा कुछ पढ़ने में किसी को रुचि है और न पढ़ाने में। कारण कि नौकरी, व्यवसाय आदि में प्रचुर धन कमा लेने की ललक हर किसी हो घिरे हुए है। अध्यापक और छात्र भी इसी प्रंग को पढ़ते पढ़ाते हैं। जब विद्यातंत्र तिरोहित हो गया और उसके हर कोने पर उदरपूर्ति से संबंधित शिक्षा ही कब्जा किए हुए हो, तब सद्ज्ञान के केंद्रों का संचालन एवं निर्माण कहाँ से बन पड़े। धर्मशालाएं बनवाकर नाम कमाने वाले अधिक से अधिक इतना कर पाते हैं कि कोई मुफ्त दवा देने वाला औषधालय, सदावर्त या प्याव खुलवा दें। दान पुण्य की सीमित परिधि इतने ही छोटे क्षेत्र में सिकुड़कर रह गई है। देवता की प्रसन्नता, स्वर्ग में स्थान सुरक्षित होने की संभावना, जब प्रचुर संपदा का एक राई रत्ती जितना अंश खर्च कर देने भर से पूरी हो जाती है, तो इतनी दूर की बात कौन सोचे कि विश्व को उन क्रांति मनीषियों की भी जरूरत है जो उल्टी चाल अपनाए हुए समुदाय को अपनी प्रचंड प्रेरणाओं के बल पर चलने के लिए घसीटें और बाध्य कर सकें। अचिंत्य चिंतन का शिकार लोकमानस तो बेतरह तबाह हो ही रहा है, इस अंधड़ से उनकी आंखों में भी धूली भर गई है जो पुण्य परमार्थ की बात सोचने और उस दिशा में कुछ कर सकने की परिस्थितियों में है। जब समूचा प्रवाह ही स्वार्थ साधन के लिए समर्पित है तो मनीषा और संपन्नता को ही क्या बन पड़ी है जो लोकहित की बात सोचें, जन कल्याण के सरंजाम जुटाए। उल्टे प्रवाह का मोड़कर सीधी दिशा में चलने के लिए लोकमानस को नियोजित करने का तारतम्य बिठाएं। समय की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा कर सकने वाले प्रकाश कण कहीं से उभरते नहीं, नव जागरण के स्वर कहीं से उठते नहीं। ऐसी दशा में घोर निराशा के गर्त में अपने को भी डूब जाने के लिए परामर्श देने की अपेक्षा यही उपयुक्त दिखता है कि टैगोर के उस गीत को ही गाया गुनगुनाया जाए जिसमें उन्होंने कहा था, एकला चलो रे। अकेला चलना कठिन तो है पर असंभव नहीं। बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, मीरा, चैतन्य, कबीर आदि मंडली गठित करने और साधन जुटाने की प्रतीक्षा में नहीं बैठे रहे, वरन अपने शरीर और मन मात्र को साथ लेकर उस मार्ग पर चले पड़े थे जो दर्शकों, परामर्शदाताओं को साधनों के अभाव में असंभव जैसा प्रतीत होता था। इस संदर्भ में वे अधिक साहसी दिखते हैं जो अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर घोंसला छोड़कर अभीष्ट दिशा में उड़ चलते हैं और सफलता असफलता की बात ईश्वर भरोसे छोड़ देते हैं। देवर्षि नारद को भी विश्व भ्रमण में चल पड़ने की हिम्मत आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं से नहीं मिली थी। चिर पुरातन को पुनर्जीवित करने के लिए सतयुग की वापसी जैसा भागीरथ प्रयत्न शांतिकुंज ने अपने एकाकी बलबूते आरंभ किया है। यूं दिव्यदर्शी यह भी देखते हैं कि सत्य में हजार हाथी के बराबर बल होता है। संकल्प के बल पर ब्रह्मा ने समूची सृष्टि रच डाली थी, फिर ऋषि परंपरा इतनी मूर्छित तो नहीं हुई है जिसके पुनरुत्थान की आशा ही छोड़नी पड़े। लक्ष्मण की मूर्छा जगी थी, मानवीय गरिमा को पुनर्जीवित करने का संकल्प जगा है तो कल परसों यह भी तनकर खड़ा होगा। लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण। शांतिकुंज एक क्षोभ भूमि पर बसा थोड़े से लोगों द्वारा संचालित एक साधारण सा आश्रम है। उसकी व्यय व्यवस्था प्रेमी परिजनों द्वारा नित्य निकाली जाने वाली 10 पैसा जैसी छोटी राशि से चलती है। 1 घंटा समय नित्य निकालने वाले परिजन भी उसी श्रद्धा के बल पर इतनी भारी गाड़ी को अपने बलबूते घसीटते रहे हैं। सरकारी या धनाध्यक्षों के अनुग्रह की न कभी आशा की गई और न वह इस संकल्प की ओर उन्मुख ही हुआ। सज्ञान प्रकाश के देवता सविता के रथ में कभी ऋषि मनीषी तपस्वी साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ और परिव्राजक रूपी सात अश्व मिलजुल कर दौड़ते थे और उस ऊर्जा एवं आभा से विश्व का कोना कोना आलोक से भरते थे। उस सांस्कृतिक रथ के निर्माण में समर्थ संपन्न अपनी श्रद्धांजलियां नियोजित करते रहते थे। धरती पर स्वर्ग के अवतरण का अवसर इसी आधार पर उपलब्ध हुआ था, पर अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। तथा कथित संतजन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए देवताओं के एजेंट बन गए हैं। पैसा खर्चने वाले आत्मा विडंबना के अतिरिक्त और किसी काम के लिए एक कौड़ी भी खर्चना नहीं चाहते। ऐसी दशा में विकृतियां ही बढ़ती हैं। विकृतियां मात्र विपत्ति ही नहीं लाती, वे उनके समाधान के उपायों को भी झुठलाती और उधर ध्यान देने वालों को भी बरगलाती हैं। इस प्रकार समस्या दूनी दोहरी और जटिल हो जाती है। फिर भी कुछ करना तो है ही। स्वल्प सामर्थ्य में भी हीनता के भाव मन में न लाकर जो संभव है उसे कर गुजरना ही इष्ट है। वही किया भी जा रहा है। दुष्कर्मों की तरह सत्कर्मों का अनुकरण करने वाले भी अनेकों निकल आते हैं। दिवाली की रात दीप मालिकाओं से जगमगाने लगती है। दीप पर्व मनाया जाता है और समझा जाता है कि समर्थों के मुंह मोड़ लेने पर भी सामान्यों और छोटों का समुदाय भी ऐसा कुछ कर गुजरता है जिसे कम से कम सराहना का लाभ तो मिल ही सके। अखंड ज्योति और उसकी सहेली पत्रिकाओं के माध्यम से 5 लाख स्थायी और 25 लाख अस्थायी परिजनों का एक समुदाय शांतिकुंज तंत्र के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है। यह प्रायः 50 वर्ष से युग समस्याओं उसके समाधानों और वर्तमान पीढ़ी के युग धर्म स्तर के कर्तव्यों के संबंध में निरंतर कुछ पढ़ता समझता सोचता तो रहा ही है, साथ ही उसने समय की पुकार को सुनने और तदनुरूप यथासंभव कदम उठाते रहने का प्रयत्न भी चालू रखा है। यही है अपनी जीवन भर की संचित पूंजी, अपना विचार परिवार, जिसे वशम परंपरा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और सशक्त माना जा सकता है। इसी को श्रद्धासिक्त पुष्पांजलि के रूप में युग देवता के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया है। दशरथ ने अपने पुत्र विश्वामित्र को सौंप दिए थे। गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्रों का भी ऐसा ही श्रेष्ठ सदुपयोग हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रेम महाविद्यालय, कलकत्ता का नेशनल कॉलेज जैसे आश्रम भी अपने छात्रों को ऐसी ही दिशा में अग्रसर करके कृत्य हुए थे। शांतिकुंज के अंतराल में भी ऐसी ही उत्कृष्ट अभिलाषा उभरी है कि वह भी ऐसा ही कुछ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करे। वसंत 1990 से शांतिकुंज में कई प्रशिक्षण एक साथ चल पड़े हैं। इनमें से प्रथम है लोकमानस के परिष्कार का आंदोलन और उसका संचालन। दूसरा है महिला जागरण, जिसमें आधी जनसंख्या को अपना मूल्य समझने बोध करने के लिए शिक्षित स्वावलंबी और सुसंस्कृत बनने की चेतना को उभारना है। तीसरी है मानवीय अंतराल में सन्निहित प्राण चेतना के उद्दीपन हेतु साधनात्मक अन्वेषण का निर्धारण परीक्षण, यह शोध प्रक्रिया ब्रह्मवर्चस में की जाएगी। महिला प्रशिक्षण को शक्ति चेतना कहा जाएगा और भाव संवेदना उभारने वाली शिक्षा को कल्प प्रक्रिया नाम दिया गया है। यूं तीनों ही उपक्रम एक ही तंत्र के अंतर्गत काम करेंगे और उनका सूत्र संचालन करने वाली ऊर्जा एक ही बिंदु से उभरेगी। कार्यारंभ के प्रथम चरण में सोचा गया है कि 5 लाख स्थायी पाठक परिजनों में हर साल 1 लाख को प्रशिक्षित किया जाए, 5 लाख को 5 साल में प्रशिक्षित कर दिया जाए। यदि गति और दुगुनी बढ़ सकी तो सन 2000 के आगमन में प्रस्तुत 25 लाख को न केवल प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, वरन किसी न किसी सीमा तक नियमित रूप से हर दिन कुछ न कुछ करते रहने का व्रत धारण करा दिया जाएगा। 1 से 5 बनने बनाने का एक आंदोलन इसी के साथ चलाया जा रहा है। इस आधार पर आशा की जा सकती है कि जब इन्हीं दिनों 5 लाख के प्रभाव से 25 लाख कुसमुसाने और अंगड़ाए लेने लगे हैं तो आगामी वर्षों में 25 लाख से 5 गुने बढ़कर 1.25 करोड़ हो सकते हैं। क्रम आगे भी जारी रहा तो 1.25 करोड़ का 1.25 करोड़ हो जाना भी असंभव नहीं। इतने सृजन शिल्पी लोकमानस को परिष्कृत करने में, प्रचलनों में घुसी अवांछनीयताओं को उलटने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। सृष्टा की सुनियोजित योजना आगे बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं कि जन जन के मनों में समुद्र मंथन जैसी प्रक्रिया उभरे और उनमें एक से एक बढ़कर दैवी संपत्ति के प्राणवान रत्न निकलकर इस विश्व सुधा को स्वर्गोपम बनाकर रख दें। इन दिनों आदर्शवादी विरक्तों को खोज निकालने में सफलता नहीं मिल रही है। रंगीन कपड़े पहनने वालों, माला सटकाने वालों और मुफ्त के सुविधा साधन बटोरने वालों की कमी नहीं, पर विवेकानंद दयानंद एवं केशवानंद कहां से आएं? उस दिशा में प्रायः निराश हो चलने पर अब सोचा यह गया है कि सदगृहस्थों के माध्यम से ही आपत्तिकालीन आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसका और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हर वर्ष 1 लाख का शिक्षण, यह शांतिकुंज का वर्तमान निर्धारण है। इसी संख्या में उन महिलाओं को भी सम्मिलित रखा गया है जो घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर महिला उन्नयन के लिए समय निकाल सकने की स्थिति में है। आशा की जानी चाहिए कि सुविधा साधन बढ़ाते रहें तो अगले 10 वर्ष में 25 लाख को अपने घर वालों में ही प्रशिक्षित कर दिया जाए। उन्हें ऐसा सांचा बना दिया जाए जो अपनी बनावट के अनुरूप नए पुर्जे नए खिलौने ढालने की आवश्यकता पूरी करते रहें। ईश्वर की इच्छा विस्तार करने की हो तो अपना मिशन भी मत्स्यावतार की तरह सुविस्तृत हो सकता है, समूचे संसार को अपने अंचल में बटोर सकता है। उपरोक्त प्रशिक्षण वसंत पर्व 31 जनवरी 1990 से विधिवत आरंभ हो गया है। इसमें मात्र अखंड ज्योति के परिजन ही 5-5 दिन के लिए प्रवेश पा सकेंगे। सभी को समय का पूर्व निर्धारण करना होगा और स्वीकृति मिलने पर ही आने की तैयारी करनी होगी। अब उन सभी को कड़ाई के साथ आने के लिए मना कर दिया गया है जो मात्र सैर सपाटे के लिए आया करते थे। अशिक्षित, वयोवृद्ध, रोगी, बालक, अंगड़ इन सत्रों में प्रवेश नहीं ही पा सकेंगे। 5 दिवसीय साधना का स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप। मानवीय चेतना 3 शरीर धारण किए हुए है, जिनमें से एक को स्थूल, दूसरे को सूक्ष्म और तीसरे को कारण कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करने से लेकर उपलब्धियां अर्जित करने तक के अनेकों क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तदनुरूप ही वे हल्के, भारी और सशक्त होते हैं। बोलचाल की वाणी को ही लें, वह जीभ से निकलती, कानों के छेदों से टकराती, मस्तिष्क में पहुंचती, जानकारी देती और अपना कार्य पूरा कर लेती है। आमतौर से इसी का उच्चारण होता है। विचार विनिमय, अध्यापन, अध्ययन, कथन, श्रवण में इसी का उपयोग होता रहा है। एक कहता वह दूसरा सुनता है। जो जानने योग्य है उसे जानता है, जो पहले से ही जाना हुआ है उसकी उपेक्षा कर देता। उपदेश प्रयोजन में भी इतनी ही प्रक्रिया संपन्न होती है। वक्ता कहते रहते हैं, श्रोता सुनते रहते हैं। जो नया कुछ होता है उसे जान लेते हैं, शेष को निरर्थक समझकर विस्मृत कर देते हैं। धार्मिक प्रयोजन में भी यही होता रहता है। उसमें कथन श्रवण का ही उपक्रम चलता रहा है। इस स्तर पर जानकारियों का आदान प्रदान होता है। ऐसा कुछ नहीं बन पड़ता तो प्रभाव डाले और अंतराल की गहराई में प्रवेश करके प्रभाव छोड़े, चिरस्थायी बने और मानस में कोई कहने लायक परिवर्तन लाए। शांतिकुंज के 5 दिवसीय सत्रों में इससे कुछ अधिक, कुछ गंभीर, कुछ प्राणवान अनुभव होता है। इसलिए उस कथन का वजन भी होता है और प्रभाव भी। निर्धारित कथन किसी ऋषिकल्प मनीषी का ही होता है। उसे संदेशवाहक की तरह किसी दूसरे से भी कहलवाया जा सकता है। उसके पीछे मात्र शब्द श्रृंखला नहीं होती, वरन ऊर्जा रहती है जो कथनी करनी और प्राण चेतना से विनिर्मित होती है। यही कारण है कि वह सुनने वालों के अंतराल की गहराई तक उतरती है, झकझोरती है और ऐसा दबाव डालती है जिसके आधार पर तथ्यों को हृदयंगम करने और उन्हें जीवन में उतारने के लिए विवश होना पड़े। यही कारण है कि 5 दिवसीय सत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रतिपादन अपनी समर्थता, प्रभावशीलता और प्राण प्रतिभा संपन्न होने का परिचय देते हुए उस मर्मस्थल तक जा पहुंचते हैं जहां से जीवन क्रम में आदर्शवादी उमंगें उद्भूत होती है। इनमें जिह्वा से निकलने वाली बैखरी वाणी ही काम नहीं करती, वरन उनके साथ सूक्ष्म परिकर की मध्यमा और कारण क्षेत्र की परावाणी का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। वे इंजेक्शन की तरह रक्त प्रवाह में भी सम्मिलित हो जाते हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वविदित और सर्वमान्य है। सिद्ध पुरुषों महामानवों में जो असाधारण शक्ति देखी गई है उसका एक ही मूलभूत कारण है उनकी तपश्चर्या। आदर्शों के परिपालन में जो संयम बरतना पड़ता है उससे बड़प्पन में घाटा पड़ता है। वह कसौटी ही संयम साधना है। इसके साथ ही दूसरा पक्ष एक और भी जुड़ा हुआ है कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए श्रेष्ठता को अपनाने, उभारने और उछालने में जो प्रयत्न परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ तक कि घाटा उठाने का भी अवसर आता है, उसे प्रसन्न एवं उल्लसित मन से सहन कर लेना। जो इन दोनों प्रयोजनों को उत्साहपूर्वक अंगीकार कर लेता है उसे तपस्वी कहते हैं। शरीर और मन को कष्ट सहने के लिए अभ्यस्त बना लेना तितिक्षा है। तितिक्षा के अभ्यास से तपश्चर्या सरल बन जाती है और उसके विकसित होने पर सिद्धियों की फसल भंडार भरने लगती है। तप का स्वरूप क्या है? ताप ऊर्जा द्वारा धातुएं भट्ठी में पिघलाकर अभीष्ट औजारों के रूप में ढाली जाती है। मिट्टी के बर्तन आवे में पककर लाल और कड़े बन जाते हैं। पानी को गर्माने से भाप बनती है और उससे शक्तिशाली इंजन चलने लगते हैं। संसार के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों में ऊर्जा के नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। 5 दिवसीय साधना में भी व्यक्ति की सहन शक्ति के अनुरूप विविध साधनाओं का समावेश रखा गया है। पूजा उपासना के हर प्रंग में किसी न किसी रूप में तपश्चर्या का अनुपात जुड़ा हुआ है। इसके बिना मात्र उथले कर्मकांडों से किसी को न सिद्धि मिल सकती है न मिल सकेगी। आत्मिक प्रगति में एक और भी बड़ी अड़चन है, पूर्व संचित दुष्कर्मों का समुच्चय। उस विपन्नता को बिना प्रायश्चित के और किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता। मैले कपड़े को धोया न जाए तो उस पर रंग कैसे चढ़े? बिना तपे धातु का शुद्ध स्वरूप कैसे निखरे और उससे उपयोगी औजार कैसे बने? क्रियमान दुष्कर्म एक ही मांग करता है कि जितनी गहरी खाई खोदी गई है उसमें उतनी ही मिट्टी डालकर स्थिति समतल जैसी बनाई जाए। यही प्रायश्चित प्रक्रिया है। इसके लिए पंच दिवसीय साधना में जहां प्रतीकात्मक प्रायश्चितों की चिन्ह पूजा का विधान रहता है, वहां यह भी कहा जाता है कि पापों की खाई पात सकने योग्य पुण्यकर्मों का नए सिरे से कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे उत्पन्न की गई दुष्प्रवृत्तियां अभिनव सत्प्रवृत्तियों से दब ढंक सकें। यहां एक प्रसंग अनुदान का भी है। बीज मात्र अपने बलबूते ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसे खाद, पानी, रखवाली जैसी बाहरी सहायताएं भी अपेक्षित रहती है। शांतिकुंज के वातावरण में ऐसे तत्वों का समुचित समावेश हुआ है जिसके सान्निध्य में चंदन के समीप उगे हुए पौधों की तरह अतिरिक्त लाभ भी मिल सके। स्वाति वर्षा जब कभी जहां कहीं भी होती है, तब वहां समुचित क्षमता वाली सीपों में मोती, केलों में कपूर, बांसों में वंशलोचन जैसी बहुमूल्य उपलब्धियां उपलब्ध होकर रहती हैं। शांतिकुंज में ऐसे तत्व अदृश्य रूप से बरसते रहते हैं जिन्हें यथा समय उस बिंदुओं की तरह घनीभूत देखा जा सके। पारस, अमृत और कल्पवृक्ष की चर्चा इस रूप में होती रहती है कि उनका संपर्क सान्निध्य निहाल कर देता है। सेनेटोरियम उन स्थानों पर बनते हैं जहां की जलवायु औषधि उपचार से भी अधिक लाभदायक हो, रुगणता और दुर्बलता को भगाने में अमृतोपम सिद्ध हो। शांतिकुंज क्षेत्र को ऐसी सुसंस्कारी भूमि के रूप में देखा जा सकता है जहां गंगातट, हिमालय की छाया और सप्त ऋषियों की तपश्चर्या के विशिष्ट संस्कार अभी भी अपने पुरातन प्रभाव का परिचय देते हैं। साधकों को जो आहार दिया जाता है वह उच्च स्तरीय सात्विकता से परिपूर्ण और प्राणचेतना की आध्यात्मिकता से अनुप्राणित रहता है। उसे बाजारों फलाहार से कहीं अधिक उच्च स्तरीय समझा जाता है। शांतिकुंज के सूत्र संचालन में जिस ऋषि युग्म की प्रधान भूमिका है, वे अगले दिनों शरीर न रहने पर भी इस पुण्य भूमि में अपना अस्तित्व बनाए रहने के लिए वचनबद्ध हैं। अगली स्थिति में उनकी साधना और भी अधिक उग्र हो जाएगी। उस समूचे उपार्जन का लाभ उन परिजनों को अनवरत रूप से मिलता रहेगा जो अगले दिनों नवसृजन के हेतु अपना समयदान, अंशदान नियोजित करने में कृपणता न बरतेंगे। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक एस्टरिस्क 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूजीरो गुरुदेव के जीवन का सार है, सारे जीवन का लेखा जोखा है, 1940 से अब तक के साहित्य का सार है। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है। कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है। इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें। इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचे कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, तब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावना पूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।